राव ये प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 1992 को सायंकाल लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम
देखो अनुकूलता प्रतिकूलता इस संसार का स्वरूप है। संसार भोगने के लिए नहीं है, संसार शासन करने के लिए है। हमने संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है कि जैसे दया है वो माया दोनों पैर है, ये चलने के लिए है, चढ़ने के लिए है, जाने के लिए देन है। ऐसे ये दाएं बाएं पैर की तरह अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये उन्नति का साधन है। अनुकूलता में राजी होना, प्रतिकूलता में नाराज होना, ये है भोग। और अनुकूल परिस्थिति में सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति में त्याग करना, मानो अल्प अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हमारी प्रतिकूल परिस्थिति मिट करके अनुकूल परिस्थिति बन जाए, ऐसा इच्छा करना है, ये उसका दुरुपयोग है। एक और बात है, संतों के चरित्रों के देखने से ऐसा मालूम होता है कि प्रायः प्रतिकूलता में उन्नति हुई है। तो प्रतिकूलता में पुराने पापों का तो नाश होता है और नई सजगता होती है, जागृति होती है, चेत होता है। जैसे किसी को नींद आई हुई हो, गर्मी का दिन हो, तो उनको हवा करो ठीक तरह से नींद गहरी आ जाएगी और उनको कुछ चुभाया जाएगा, हल्ला किया जाए तो नींद उड़ जाएगी। मानो उनकी अनुकूलता में नींद ज्यादा आती है, बेहोशी ज्यादा होती है, और प्रतिकूलता में होश आती है। दुखी आदमी होता है जो सजग होता है वो पाप से बचता है, सजग नहीं होता वो तो दुख में सुख में दोनों में नफरत में रहता है। सजग होता है विचार करे कि दुखदायी परिस्थिति किसी न किसी भूल का फल है, किसी न किसी अपने किए वो अवगुण का फल है, तो अवगुण नहीं करना है, ये उसमें ज्ञान करना है। और अनुकूल परिस्थिति है वो सुख भोग के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। धन संपत्ति वैभव आपके पास बहुत है तो वो सेवा के लिए है, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल है जो मानव शरीर में रहा है, ये विषय भोगना का इसका फल नहीं है, तो सुख भोग रहे कामोपभोग परमा एतावती निश्चित, ये आशु संपत्ति का वर्ण हुआ है। मानो भोग संग्रह करना, भोग भोगना एतावती निश्चित इतने में वर्ष, तो ये सजग मनुष्य का काम नहीं है। सजग मानो जागृत रहे, हरदम सावचेत रहे। सावधानी है साधना, ये साधना है, सावधान रहना हरदम। संतों के पदों में आता है दिल में जागृत रहिए बंदा, एक प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहो। सुख दुख में सुखी दुखी होता है, वो जागृत नहीं रहता है। जागृत वो रहता है कि आने जाने वाले हैं। भगवान ने इसका वर्णन किया तो मात्रा स्पर्श कौन थे, शीत और सुख दुख खोला आगमा पाई नो अनित्य, ये आने जाने वाले अनित्य है। इसे सिद्ध क्या हुआ, तुम आने जाने वाले नहीं हो, आगमा पाई नहीं और अनित्य नहीं हो, तो आपके सामने आने जाने वाले अनित्य है, उसे आप पर क्यों होता है, ये गलती होती है। ये तो आने जाने वाले हैं, कभी गर्मी आती है कभी सर्दी आती है, कभी वर्षा आती है कभी हवा चलती है, कभी ठंडी आती है कभी ओला पड़ते हैं, ये तो परिस्थिति बदलती ही रहती है। सूर्य की तीन दशा होती एक दिन में, सूर्य उदय होता उस समय होता है, मध्याह्न में उदय होता है, सायं उदय होता है, तो सूर्य की भी तीन दशा होती है हम लोगों के सामने। यदि भी सूर्य में दशा नहीं है, सूर्य तो अपने है झुनझुन ही है, पर हमारे देखने में तो तीन दशा दिखती है ना, तो ऐसे हम लोगों के सामने भी ये दशा बदलती है, आती जाती रहती है। सांस्कृतिक सस्व इनको तुम सहो, सहने का अर्थ हुआ कि बहुमत उसमें अनुकूलता में राजी हो जाना है, अनुकूलता में बह गए, प्रतिकूलता में नाराज होने प्रतिकूलता में बह गए, तो बहुमत सहो। सहने से क्या होता है, यंग ही न व्यसनते पुरुषम पुरुष सब, जिस पुरुष को ये दशा नहीं पहुंचाते सो अमर तत्व करते, वो अमरता का पात्र होता है, वो अमर हो जाता है। ये आने जाने वाली परिस्थिति में सुखी दुखी होता है, वो मरता ही रहता है, वो अमर नहीं हो सकता क्योंकि वो थपेड़ो में इधर उधर जाता है। जब इनको जीत जाता है तो संसार से ऊंचा उठ जाता है, संसार का स्वरूप है उससे ऊंचा उठ गया, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते। भगवान ने दोनों के लिए व्यथा सब दिया, व्यथा यंग ही ना व्यसन थे मात्रा स्पर्श व्यथा नहीं पहुंचाते, तो सुख हर से जड़ दुख बेखाए, तो जड़ होता है वो सुख हर से और दुख बेखाए, सह नहीं सका उसमें बह गया। दो धीर धरे मन माने धीर पंडित है, दोनों को समान देखता है, आने जाने वाले हैं। आगमा पाई नो अनित्या, मैं तो कभी कभी ये बात भी कहता हूँ, कैसा हो तो आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाई नो अनित्या, जप करो तो फल पड़ता है। इनको मिटा दो छोड़ो ऊंचे उठ जाओ तब तो कहना ही क्या है, आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाई नो अनित्या, मन मन में जप करो तो उतना असर नहीं होगा। आने जाने वाले ये अनित्य है, आप हो नित्य रहने वाले, तो अनित्य से आप में विकार आता है तो कैसे निर्विकार पद को प्राप्त होंगे। ये तो आने जाने वाला है, आगमा पाई आना जाना आना जाना आना जाना, कभी सूर्य उदय होता है कभी रात हो जाती है, कभी ठंडक आती है कभी गर्मी आ जाती है, कभी वर्षा आती है कभी हवा चलती है, ये तो आते जाते हैं, अनुकूलता पद से आने जाने वाले हैं। आप दोनों के देखने वाले तटस्थ हो, बहने वाले आप नहीं हो, क्योंकि ये अनित्य शरीर अनित्य अवस्था है अनित्य, और आप हो नित्य, तो नित्य के अनुभव करने के लिए अनित्य में बहना नहीं चाहिए, इनको सहना चाहिए, सहने से आप उनसे उठ जाते हो स्वमृत्व कल्प से, वो अमृतत्व कल्प से मनुष्य समर्थ होता है, कल्प से कृपु सामर्थ्य जाते हुए तो अमर होने की सामर्थ्य आ जाती है उसमें, नहीं तो सामर्थ्य नहीं आई, असमर्थ हो गए, असमर्थ को जो भोगना पड़ता है। तो ये आने जाने वाले हैं, क्या राजी हुए, अब अनुकूल आ गए तो राजी क्या हो इसमें, अरे प्रतिकूल आ गए तो नाराजी क्या, दुख क्या है इसमें, ये तो आने जाने वाले हैं, कुछ रहने वाले है ना, कोई अनुकूलता रहने वाली है ना प्रतिकूलता रहने वाली है, और आप रहने वाले हो, शरीर भी आ जाने वाले हैं, अवस्थाएं भी बाल अवस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था आ जाने वाले हैं, जन्म और मरण ये भी होने वाले मिटने वाले हैं, आज रोग निरादर भी होने वाला है, ये कोई जाने वाला थोड़ा ही है। कभी प्रशंसा होती है, कभी निंदा होती है, तो निंदा प्रशंसा का अर्थ सुखी दुखी होना नहीं है, निंदा हो वो काम करना नहीं है, निंदनीय काम करना नहीं है, और जो प्रशंसनीय काम करना है परंतु तो प्रशंसा पर राजी नहीं होना है, निंदा में दुखी नहीं होना है। अब करना चाहिए वो को जो करना शास्त्र ने कहा है, आज्ञा अनुसार करना है, ये बात है। भगवान को अपना मानना है, अपना मानना नहीं है ही अपने भगवान, संसार अपना नहीं है। जैसे आपके सामने अनुकूलता प्रतिकूलता दो आती है, परंतु आप एक रहते हो, ऐसे संसार में सुख और दुख और आराम और कभी तकलीफ ये आते रहते हैं, परंतु भगवान सब में समान रहते हैं। भगवान कहते हैं ये आने जाने वाले हैं, नमाम कर्मा निपंती नमे कर्म फले स्पिया, कर्म फल में स्पिया नहीं, अभी सुखी हो जाए तो कर्म मेरे को बांधते नहीं। इति मांग यो भी जा, इसमें जो जानता है वो भी कर्म से बंधता नहीं। भगवान अपना उदाहरण देर बताते हैं, न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नोदेद प्राप्य सा प्रियम, प्रियम प्राप्य न प्रतिष्ठित हर्षित न हो, और अप्रिय प्राप्य न उद्विजित अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग न हो। तो भगवान कहते हैं मैं रहता हूँ ऐसे ही, इसी मांग योग कोई ऐसा ज्ञान ये विद्या है वो भी ठीक अमर हो जाएगा। इसी मांग योग भी जाना चाहिए, कर्म भी न समझ जैसे वो कर्म बनेगा नहीं, सुख दुख होना बन जाएगा। तो अपने बंधन के लिए शरीर मिला है कि मुक्ति के लिए, ये शरीर मुक्ति के लिए मिला है, बंधन के लिए नहीं मिला है। सुख दुख तो पशु पक्षी वृक्ष भूत प्रेत पिशाच ये सब के सब सुख दुख होते हैं। वृक्षों को भी जड़ मिले थरी मिले तो वर्षा से राजी हो जाते हैं, जाड़ा मिले तो कुमरा जाते हैं, और ज्यादा गर्मी मिले तो कुमला जाते हैं। तो वृक्षों में की ये बात होती है, अगर ये हमारे में हुई तो स्थावर जंगल में भेज क्या रहा, और पशु पक्षी भी राजी नाराज होते हैं, देवता भी राजी नाराज होते, भूत प्रेत पिशाच भी राजी नाराज होते हैं, अगर राजी नाराज हम हुए तो फिर मनुष्य का क्या हुई, लिखा रहता है मनुष्य बड़ा क्या है। मनुष्य में एक बहुत विचित्र बात है, वो है विवेक। पशु पक्षी आदि में विवेक नहीं है, भोग नहीं है वो, और इसमें मनुष्य शरीर में भी आकर के भोग ही भोगता है, सुख ही दुख ही होता है। तो फिर भगवान मनुष्य शरीर नहीं देते, भोगियों नहीं देते, भोगियों नहीं मिलेगी, सदा सुख दुख भोगते ही रहो भोगते रहो। 84 लाख जो नहीं है, भगवान के यहाँ शरीरों की कमी नहीं है, तरह तरह के शरीर है, तो सुख दुख भोगना तो वहां भी हो जाएगा। मनुष्य शरीर का उपयोग तो इन दोनों से ऊंचा उठने का है, सुख से भी ऊंचा उठना है, दुख से भी ऊंचा उठना है, इनसे ऊंचा उठना तब एक आनंद मिलता है। आनंद सुख और दुख से जोड़ा है, द्वंद्व है ये, और आनंद है सुखम आत्यंत तक बोले बुद्धि इंद्रियम, वो एक आत्यंत सुख है, उससे बढ़कर को सुख नहीं है। यंग लघुआ चापर हम लाभ मन तेनाथ, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे दूसरा कोई लाभ मान ही नहीं सकता, मुझे जानने में आता है सभी कोई लाभ है। तो यश में से दुख है, जिसमें से दुख है न बिचारे दुख से विशेष नहीं होता है, वो पद मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा विचार करें, साधन करते हैं सत्संग करते हैं तो एक बल आता है ना प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में बल आता है हमारे में, सुख दुख के सहने का बल आता है। कि आप जानते हैं सब में जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, जो रुचि रखते हैं, उनका ये अनुभव है। सत्संग मिलती है उन दिनों में सुख दुख असर नहीं करता है इतना, सत्संग नहीं मिलता है उस समय असर ज्यादा करता है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना, तो सत्संग की बातों को धारण कर रहे तो सदा के लिए ठीक हो जाए। और भगवान अपने ये अपना नहीं है संसार, जो सुखी दुखी नहीं होते हैं सदा आनंद में रहते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा चाह नहीं मोह निशा लवनेशा, रात और दिन अपने यहाँ दो होते हैं, सूर्य में दो थोड़े होते हैं, वहाँ मोह निशा लवनेश मात्र नहीं है, एक आनंद है। इन दोनों से ऊंचे उठने से एक आनंद मिलता है, वो एक विचित्र आनंद है, अलौकिक आनंद है, विलक्षण आनंद है, और मनुष्य भी मिल सकता है। उसकी पहचान है आप भजन स्मरण करते हैं, जब मन लगाकर कीर्तन करते हैं तो एक आनंद आता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई विषय नहीं है, मान अपमान कोई परिस्थिति नहीं है, आदर निरादर कोई बात नहीं है, वहाँ निंदा प्रशंसा नहीं है, फिर भी उसमें एक आनंद आता है। स्वतः क्यों आनंद आता है, क्यों वो ऊंचा उठ गया, उसमें भगवान की तरफ चला गया, वहां जाने से ये शांति मिलती है और उस शांति में सहने की शक्ति आती है। साधन करते करते ताकत एक आती है, बीमार आदमी होता है ना, मेरे को याद है बीमारी में जब शक्ति नहीं थी तो इतनी याद है, एक तरफ दीवार एक तरफ लाठी, दो से चल सकते थे, लेकिन लाठी से नहीं चल सकते, दीवार से नहीं चल सकते, सहारा लेना पड़ता है। और बल होता है तो मरा भीड़ है उसमें ऐसे चीज करके चलता है, तो बल है। तो सुख दुख के भोगने से निर्बलता आती है और इनको सहने से सबलता आती है, बड़ा सा है, उत्साह होता है, हिम्मत आती है कि हम सकते हैं, रह सकते हैं, क्या बड़ी बात है, कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसमें न रह सके, ऐसी बात है। सुख हर्षे जड़ जड़ कहा उसको, जड़ सुख हर्षे जड़ है, दुख बिल का जड़ है, समझदार नहीं है। सुख में हर्ष क्या बनाना, आ जाएगा दुख आ गया, उसे घबराने क्या है, ये तो आने जाने वाले हैं, सुबह शाम होता है, अभिंग हम दिन रात्रि वक्त दिन और रात की तरह अलंग है, आवेगा ये तो आवेगा, अब आवेगा हमने जान लिया पहले भी आता है तो ठीक है, ये क्या बात, समझ गए, आता है और जाता है, आगमा पाई ना अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है, ये रहने वाले नहीं है, नित्य नहीं है। आप नित्य हो तो नित्य को अनित्य विचलित कर दे बड़े आश्चर्य की बात है। अपने अपने जीवन में कितनी बार मन चाही बात हुई है और कितने बार मन चाही बात नहीं हुई है। एक और बात है कि मन के चाहने से अनुकूलता नहीं मिलती है और न चाहने से प्रतिकूलता टलती नहीं है, तो चाहना न चाहना किस काम आया, बताओ, मुझे दुखी होगा और क्या फायदा हुआ। ये सुख दुख आते किसी विधान से, किसी कायदे से, किसी नियम से, आपके चाहने ना चाहने का तो नहीं है। धन आता है ना, धन के चाहने से धन आ जाए और न चाहने से धन ना आए, ये बात नहीं है। आता है तो चाहने भी जाता है, न चाहने भी जाता है, दुख उचाते नहीं तो भी आ जाता है। एकादश करने में आया है कि सुख है उसी चाहना न करे, चश्मान नीचे दुख और सुख स्वर्गीय नर्क होगा, ये स्वर्ग में भी सुख दुख मिलता है, नरकों में भी सुख दुख मिलता है, मृत्युलोक में भी सुख दुख मिलता है, ये तो सब जगह संसार मात्र में ऐसी बात होती है, ऊंचे से ऊंचे लोगों में भी होता है, धनी से धनी के भी होता है, गरीब से गरीब के भी होता है, पंडित से पंडित के भी होता है, मूर्ख से मूर्ख के भी होता है, ये चाहना के अधीन नहीं है, ये तो आता है आता है जाता है, रहता है नहीं, बह रहा है बह रहा है, प्रवाही चल रहा है। अब उस समय में राजीव नारायण जी मुहबतू तू पास है मुहबतू बचा की कितनी आज तरह की बात है, दुख की बात है कि आने जाने वाले में हम राजीव नाराज उस समय मुहबतू ये तो बह रहा है, ये तो आएगा, उसमें बह रहे उसमें क्या राजी हो क्या नाराज हो किम भस रहा हूँ किम भस रहूंगा एकादशी बाढ़िया है क्या घटिया है इसमें क्या अच्छा है क्या मंदा है, अच्छा है वो बह जाता है, मंदा है वो बह जाता है, अनुकूलता वो बह जाती है, प्रतिकूलता वो बह जाती है, ये तो सब बहने वाली चीजें हैं। आप रहने वाले हो जैसे संसार सब बहने वाला, संसार में रहने वाला परमात्मा बहने वाला नहीं है, ऐसे ही सही में अनुकूलता प्रतिकूलता बहने वाली है, आप रहने वाले हो, तो इसको अपना न माने, उपभोग न करे, सदुपयोग करे, सुख पहुंचाए। आपके पास सुख सामग्री है आपके भोगने के लिए नहीं है, ये दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, सेवा करने के लिए है, सेवा की सामग्री दी है, और वो नहीं आया तो क्या बात है, अपने सेवा की जिम्मेवारी नहीं रही। देखो धनी आदमी से ही लोग आशा रखते हैं, निर्धन से क्या आशा रखे, तो प्रत्यक्ष बात है कि मेरे से आप बात सुनने की तो आशा रखते हो, रुपया लेने की आशा रखते हो, हजार दो हजार सौ रुपया ले आ, कभी होती है ऐसा बाबा जी दाद है कि कुछ है नहीं, तो आशा उसी से रखी जाए जो आशा पूछती करता हो, है ही नहीं उसमें क्या आशा रखी, तो उसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, माल पर जगत लगती है, माल जगत किस बात का, इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम ही नहीं किया तो टैक्स किस बात का होगा, ये जो अच्छा शोक अनुकूलता देखते उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा, अगर ये नहीं होगी तो टैक्स लगेगा ही नहीं, इसलिए भी तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, जितना जितना आपने मुनाफा किया है कमाया है उसका बदल वो देना पड़ेगा, कर लगता है, कर है सुख पर कर लगता है, दूसरे लोगों को सेवा करनी चाहिए, सेवा की आशा रखते हैं, नहीं रखते नहीं देते हो तो आपको दंड होगा, विरोचन की और वो क्या नाम था, सुधन्वा, दोनों मित्र से ही सुधन्वा और विरोचन साथ साथ के एक केस ने नाम की कन्या को देखा तो उन्होंने कहा भाई हम विवाह करेंगे, वो कहते हम करेंगे, तो कहा भाई तुम करोगे ये किसी को बनेगी सब होगा तुम्हारे चलेगे नहीं, ये किसी को स्वीकार करती है, तो वे गए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो वह बोली तुम्हारे में श्रेष्ठ होगा उसको मैं तो करूंगी, श्रेष्ठ कहा तो वो सुधन्वा और विरोचन, विरोचन कह रहे मैं राजपुत्र हूँ, राजा का बेटा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, वो कह मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहते मैं भी श्रेष्ठ हूँ, कि तुम श्रेष्ठ कैसे हो, तुम ब्राह्मण हुए तो क्या हमारे पिता गए हाथ मानते हो, हम तुम्हारे सामने हाथ मानते हैं, तो मांगने वाले उस रेट हुआ कि लेने वाले हाथ से पता लगता है, करा ब्याह में सूची तक राशि से उस राशि पर रहता है, कहते हमारे पिताजी आते हैं तो तेरे पिताजी खड़े होते हैं उत्थान जैसे, तो हम मां बड़े हुए तो छोटा हुआ, आप विवाद हो गए सर, तो फिर शुक्रपा से गए शुक्राचार्य के पास, विवाद हो गया, प्रहलाद जी को पूछा, प्रहलाद जी के पास गए तो प्रहलाद जी ने कहा भाई न्याय करो, तुमने शर्त कर ली है ऐसी कि बड़ा वो जो श्रेष्ठ होगा उसका तो होगा विवाह, और हार जाएगा वो मारा जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, हार जा मार दिया जाएगा, प्रहलाद जी ने कहा ठीक है भाई अब इसका पुत्र फिर दूंगा, अब कर ली आ गई बड़ा जैसे पुत्र मर जाए तो क्या उत्तर, शुरू हो गई तो कि मैं फिर समझ कर दूंगा, तारीख दे दी, मुकदमा होता है तारीख पड़ जाती है, अमुक तारीख को फैसला होगा। वो गए शुक्राचार्य महाराज के पास कि महाराज ऐसी बात और क्या करें। तो शुक्राचार्य ने टक्का सा उत्तर दे दिया, फिर वो पुत्र प्यारा है तो धर्म को तिलांजलि दे, और धर्म प्यारा तो पुत्र को, धर्म कैसे हो जाएगी। कि महाराज कोई ऐसी बात बताओ हमारा धर्म भी रह जाए और पुत्र भी रह जाए, कि तुम्हारा धर्म भी रहेगा। दूसरी बात कि मैं कुछ नहीं दूं, कौन बोलू नहीं कुछ तो भी धर्म जाएगा, क्योंकि न्याय जानता है नहीं कहता, तो इसमें ही तुम्हारी खत्म हो जाएगा। मुश्किल हो गई प्रहलाद जी जगह क्या करे, बड़ी मुश्किल हो गई। समय पर तुम हाजिर हो, बोलो साहब कौन श्रेष्ठ है। तो प्रहलाद जी तो भक्त थे ना भगवान के, उन्होंने कहा देखो मेरे से तो तुम्हारा पिता श्रेष्ठ है, सुतन बाबू कह तुम्हारा पिता श्रेष्ठ है, और इस विभूषण की माँ से तुम्हारी माँ श्रेष्ठ है, और इससे तुम श्रेष्ठ हो। तीन बात कही, न्याय कर दिया तो वो राजी हो गया। वो राजी हो गया, राजी होकर कहा कि तुमने न्याय अच्छा किया, इस वास्ते तेरे पुत्र को हम देते हैं, मारे हमारे घर से नहीं, तुमने न्याय ठीक किया। तो न्याय रखने से बेटा भी रह गया अन्याय करते, तो अन्याय न्याय तो खुद छोड़ देता और बेटा मरा ही जाता। तो धर्म तो अंतिम धर्मो रक्षती रक्षिता, धर्म की रक्षा करो तो आपकी रक्षा हो जाएगी, धर्म का आप त्याग करोगे तो आपका नाश हो जाएगा। धर्मो होती अंति रक्षती रक्षिता, सही बात है। तो आदमी को ठीक ध्यान देना चाहिए, तो धर्म को लेकर के अपना कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो धर्म क्या है वो अगर ठीक नहीं करते हो तो तुम धर्म से च्युत हो, और उल्ट पुलट करते हो धर्म से च्युत होते हो। तो बात ठीक, न्याय पर रहना चाहिए, न्याय रहने पर सब काम ठीक होता है। भगवान की तरफ देखे, ठीक तरह से विचार करे, मोह नहीं रखे, ये मोह में समझे नुकसान हो जाता है, तो मोह न करके ठीक तरह से करे तो सब काम ठीक हो जाता है। तो ये बात है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है तभी तो मन की मनुष्य की परीक्षा होती है। ये आवे ही नहीं तो परीक्षा जैसे हो, तुम कितने पानी हो क्या पता लगे, पता ही इससे ही लगता है। अनुकूलता भी प्रतिकूलता आती है, ठीक आता है ठीक आता है, उन सुख आदमी के होश होता है, परीक्षा होती है। तो ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता अवसर है परीक्षा का, तो सदुपयोग किया जाए। एक विचित्र बात है, देखो ये सुख दुख अच्छा और मंदा नहीं है, दुरुपयोग खराब है, सदुपयोग अच्छा है। रामायण महाराज ने 7 प्रश्न किए, गुरु जी ने काकभूषण से 7 प्रश्न किए, उन प्रश्नों में सबसे दुर्लभ सही कौन सा है, ये प्रश्न है पहला। तो सबसे दुर्लभ मनुष्य ही, जीव सरासर जाते मनुष्य शरीर, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य का शरीर है ये दुर्लभ है, क्योंकि उसमें सब काम होता है। इसकी महिमा कहते हैं कि स्वर्ग घर नरक अपवर घर से नहीं, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देरी, ये महिमा मैं क्या, इसमें स्वर्ग जा सकते हैं नरकों में जा सकते हैं, ये महिमा है वो महिमा सही है, बड़ा बढ़िया है। स्वर्ग नरक अपवर्ग खास निशे नहीं है, स्वर्ग में जाओ नरकों में जाओ, 84 लाख जोनी में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, और भगवान की भक्ति प्राप्त करो, ये चीजें मिलती है इसमें। तो उसमें दोनों बात आई है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशे नहीं, ये महिमा में है, नरक प्रत्यक्ष नरक मिलता है। तो महिमा में दोनों का वर्णन क्यों किया, स्वर्ग का ही वर्णन करते, मुक्ति का ही वर्णन करते, बंधन का न करते, नरकों का नहीं कहते, तो नरक नहीं कहना इसकी अर्थ क्या हुआ। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, पर मनुष्य शरीर में दुर्लभ महिमा सदुपयोग की है, शरीर की नहीं। सब लोग को तो मुक्ति हो जाए, भक्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए, सब सब कल्याण हो जाए, और फिर लोग नरक हो जाए, 24 लाख धोनी हो जाए, दंड पाना पड़े। तो इसमें प्राप्त हो रहा है जिसमें सदुपयोग की महिमा हुई, शरीर की महिमा नहीं हुई है। तो शरीर फिर मैंने पूछा तो शरीर कि शरीर ऐसा है कि जिसमें सब कुछ आप कर सकते हैं, पसंद भी कर सकते हैं, उत्थान भी कर सकते हैं। तो सदुपयोग दुरुपयोग की महिमा मूल यहाँ पर है। तो हर एक परिस्थिति आप उसका सदुपयोग करो। आप तो दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए, सुख ही स्मरण करे दुख क्यों होगा। दुख तो भगवान को भूला तो होता है ना। एक बात याद आ गई, अयोध्या में युगलानंद शरण जी महाराज हुए, बड़े अच्छे विद्वान थे, हिंदी संस्कृत और उर्दू के फारसी के भी विद्वान। इस बात सुनी तो उन्होंने कहा कि संसार में पुण्य और पाप दो है, उसमें दो में कहकर डेढ़ पाप है डेढ़ पुण्य। भगवान को याद रखना पूरा पुण्य और उपकार करना आधा पुण्य, और भगवान को भूलना पूरा पाप, और हिंसा करना हत्या करना दो दुख देना ये आधा पाप डेढ़ पाप। तो बड़ी विशेष बात लगी, पढ़ा मैंने उनके वचन से पूरे कल्याण में आया था, तो बड़ी विचित्र बात लगी। तो विचित्र लगी तो एक दिन गीता का पाठ कर रहा था, तो गीता में भी ऐसा भाव आया, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबंधने राधवा। तो सुकृति कौन है? भगवान का भजन करे सुकृति है, और भगवान भजन करे दुष्कृति है। ये पापी है जो भगवान भजन नहीं करते। तो उसमें कहा भगवान भजन करो पुण्यात्मा है, वो पूरा पुण्य है। तो देखो तो गीता में मिल गया, हमें देखा जैसे संतों ने कहा है गीता में लिखा हुआ ही है, तो सीधे वहां से ही आवेगी। एक वचन आया है कि कहीं भी है तो महाभारत में है, और महाभारत में नहीं तो कहीं भी नहीं है। तो सभी बात आवे गीता में नहीं तो कहाँ आवेगा। चतुर्विधा भजन जना सुकृति ना, तो भजन करने वाले हैं वो पुण्यात्मा है, नाम दुष्योधा प्रवचित पापात्मा है जो भगवान का भजन नहीं करते। बात भी आ गई, तो उसका उपकार करते हैं पाप करते हैं, उपकार करते हैं पुण्य करते हैं, तो वो आधा ही हुआ है। आधा क्योंकि पुण्य पाप का फल तो सुख दुख मिलेगा ना, सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा, और भगवान का भजन कर तो निहाल हो जाएगा, और भगवान नहीं करेगा तो पतन ही पतन होगा। तो पूरा पुण्य पाप हुआ वो पूरा पूरा का पूरा। अच्छा पुण्य करे तो उस थोड़ा दिन सुख मिल जाएगा, पाप करे थोड़ा दिन दुख मिल जाएगा, तो आधा ही हुआ वो। गीता में लिखा ऐसे ही, जो संतों ने कहा उस गीता में ऐसे ही लिखा है। तो ऐसी बात है, तो ये अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे उसका सदुपयोग करो। देखो बीमारी आती है, बीमारी का सदुपयोग किया जो कल्याण हो जाए, और स्वस्थता होती है सदुपयोग तो कल्याण हो जाए। अब बीमारी का सदुपयोग क्या है कि बीमारी को तप समझे। तप कैसा है कि जान करके आप पंचाग्नि तपो, जान करके जाड़ा सहो, जान करके वर्षा सहो, तो ये तप है, ये आधा तप है, और सुख और दुख आवे उसको सहन होती है, पूरा तप है। किसी बात से तपस्या करने के लिए जाओ, अब दोपहर के समय में बैसाख का महीना हो, चारों तरफ आग सुलगा कर बीच में बैठे, तो पंचाग्नि तप है वो, चारों तरफ तो आग लगाई है, बीच में सूर्य का धाम होता है, पंचाग्नि तप है। और बुखार आ जाए तो आग साफ सही तपता है, जलन हो जाती है, तो वो बुखार तप है, वो है भगवान का भेजा हुआ। ये अपना मन घड़ंत आप सबो जान कर सको, तो मन घड़ंत का उतना मात्र नहीं है जितना आप सारे हुए, इधर चाहे आप संतुष्ट हो बंदा थी तो भी मसला समय सिद्ध हो असिद्ध हो चाहे कृष्ण आप इन्होंने बच जैसे इधर जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो सुख आवे तो इसमें संतुख हो तो उसमें संतुष्ट सुख में सुखी और दुख में भी सुखी तो साधन हो जाएगा और दुख में भी दुखी और सुख में भी दुखी तो साधन हो जाएगा और सुख में सुखी दुख में दुखी साधन नहीं होगा क्या होगा सुख में भी सुखी और दुख में भी सुखी तो सुख में भी सुखी दुख में सुखी कैसा है कि सुख में सुखी तो यह है कि भजन बनेगा भगवान की तरफ चलेंगे हम ठीक है और दुख में इसमें पाप का नाश हो जाएगा आपसे आप भजन करना पड़ेगा तो डबल लाभ होगा इसमें पाप करना तो आप सब होता है भजन करेंगे इसमें तो सुखी ज्यादा सुखी तो सुख में भी सुखी सुख में दुख में सुखी दुख में भी दुखी सुख में भी दुखी तो सुख में दुख क्यों है कि पुण्य खत्म हो रहा है गफलत न हो जाए कहीं पर सावधान रहो भाई सावधान रहो सुख में फंस जाओगे ऐसे दुख में गबरे हो जाओ फंस जाओगे तो दुश्मन भी दुख सावधान दोनों में सजग रहो तो इन सुखदायी दुखदायी परिस्थिति भोगने के लिए नहीं है सजग होने के लिए है इनमें अपना कल्याण करने के लिए है तो संसार है ये क्या है ये पाठशाला है पढ़ाई होती है यहाँ तो पढ़ाई क्या है अनुकूलता प्रतिकूलता आती है उसको सहो निर्विकार रहो दोनों में सम रहो चाहे दुखी हो जाओ चाहे सुखी हो जाओ ऐसा ही सम रहो साधन बन जाएगा पर सुखी सुख में दुखी साधन नहीं बनेगा ये तो भोग होगा तो भोग यो नहीं है मनुष्य मनुष्य के सिवा तो ऐसे भोगते रहोगे तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा एक सिद्धांत है मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं करता उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलता संसार में भी जो अच्छा नौकर है और मालिक उसका तिरस्कार करता है उसको अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे अगर अच्छा मालिक मिला है और नौकर तिरस्कार करता है तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा संत महात्मा मिले उनका सदुपयोग नहीं करेगा तो संत नहीं मिलेगा अन्न है बहुत वो अन्न का निरादर करता है तृष्ण नष्ट करता है तो भूखा मरना पड़ेगा जल का निरादर नष्ट करता है तो जल कैसे मरना पड़ेगा तुम्हारे जो परमात्मा परिस्थिति है उसका ठीक सदुपयोग करो नहीं करो तो दंड होगा तो सदुपयोग करो मनुष्य जी मिला है सदु नहीं फिर मनुष्य जी कैसे मिलेगा भगवान कैसे देंगे बच्चों को माता पिता मिठाई देते हैं वो कार राजी है तो फिर मिलेंगे मिठाई को देकर वो पेशाब की नाली में फेंक दे तो पेशाब मिलेगा थप्पड़ मिलेगी क्यों करता है ये इसलिए जो आई है परिस्थिति उसका ठीक सदुपयोग करो तो भगवान राजी होंगे कल्याण होगा अर्जुन ने पूछा कि महाराज अप्राप्य योग संस्कृति कहाँ गति कृष्ण गति कृष्ण बताओ महाराज वो किस गति को जाता है योग संस्कृति हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो और बीच में प्रांत रह जाए अधूरे तो भगवान कहते वो योग भ्रष्ट होता है स्वर्ग में जाकर पी जाए सीमा ने ग्रह लेता है एक है जो सीधा योगी नाम है वो कुले भोजी जी जन्म लेता है तो साधु दो तरह के होते हैं एक का तो वैराग्य त्याग हो गया भजन में लग गया एक को वैराग्य जितना होगा नहीं पर भजन में लग गया दोनों साधु योग भ्रष्ट होते हैं तो जिनके भोगों में रुचि रही और वो स्वर्ग में जाता है फिर सीमा में घर जन्म लेता है जिस भोगों में रुचि नहीं है वो स्वर्ग में सीमा में नहीं जाए योगी नाम है वो कुले भोजी सीधा योगी उनमें जन्म होता है जन्म दुर्लभम ये जन्म बड़ा दुर्लभ है क्योंकि जन्म से ही उनके संस्कार अच्छे रहते हैं संग अच्छा रहता है वायुमंडल अच्छा रहता है इस तो भूये संशुद्धों को निंदन फिर वो संस्कृति के लिए तेजी करता है तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य के लिए ऐसी बात है मौका मिला है ये मौका मिला उसको ध्यान देना नहीं चाहिए समय चूंकि पुण्य कहा पछता है फिर पछता क्या होगा समय रहते हुए सावधान होगा काम करो तो ठीक होगा कब प्रसाद किसी सुखा नहीं तो अभी मौका मिला है तो अनुकूलता प्रतिकूलता आ गएगी। ये दोनों ही अपनी तपस्या के लिए, दोनों ही उन्नति करने के लिए है। एक पैर से थोड़ा चला जाता है, दो पैरों में चलते हैं तो सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख ऐसा कर देता है। पुण्य का रास्ता भी सुखदायी परिस्थिति, पुण्य का रास्ता आया तो उसमें दूसरों का हित करना, सेवा करने के लिए मिला। दुख आया तो सुख की इच्छा छोड़ देना। सुख की इच्छा का नाम ही दुख है, तो कोई है नहीं चीज। परिस्थिति अनुकूल नहीं है, इच्छा सुख से कैसे दुख होता है। प्रतिकूल अगर राजी हो जाए ठीक है, भगवान ने तपस्या भेजी है। अनुकूल परिस्थिति में अपनी वस्तुएं, अपनी परिस्थिति दूसरों के सुख में खर्च करना पड़ता है, ये परिश्रम होता है। दुख में खर्च करना नहीं पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, केवल त्याग उसमें ही करना पड़ेगा। तो सुखदायी परिस्थिति में डबल काम करना पड़ेगा, दूना काम करना पड़ेगा, वस्तु भी खर्च करनी पड़ेगी, राजी भी होना होगा। और दुखदायी परिस्थिति में खर्च करना पड़ेगा ही नहीं, राजी होना होगा, एक सुगम चल जाएगा। तो अपने सस्ता से दुख पड़ता है साधन करने में, इसमें दुख क्यों हो रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया, भगवान ने परिस्थिति भेजी ये बात। तो अनुकूल प्रतिकूलता दोनों इसी बात है। और भगवान के जानने की बात, भगवान को जाने क्या, भगवान को मानना है। भगवान को जानना तो सो जाने चाहिए, जनाई भगवान जनाएंगे तब जानोगे। तुम्हारी कृपा तुम्हें अभिनंदन जान तो भक्त भक्त चंदन, अब कृपा से जाना तो भगवान जी से सुख दुख की परिस्थिति है उनमें उलझे नहीं, अरे भगवान ही चलता है। भगवान फिर अपना जना देते है सुख दुख, ये भोग, ये संसार, इनसे ऊंचा उठ जाता है भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर जानना ही हो जाता है, मानना ही होता है, प्राप्त भी हो जाता है। ये बात। नारायण 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 नारायण।